हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 41, 42, 43। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रह न परः। करारिविन्दे न पदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे विवस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द।
चित करा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात हरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहम् न जानि ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपांगनानां सदुकूलचोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं चोरा यगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधरम श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद्भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद 13वां अध्याय जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। हमने देखा धृतराष्ट्र महाराज विदुर जी के उपदेश को श्रवताई करके हिमालय की ओर जा चुके हैं और उनको ना पाकर युधिष्ठिर महाराज अत्यंत ही दुखी हैं और बहुत ज्यादा दुखी होकर संजय से उन्होंने पूछा कि मेरे ताजश्री कहाँ हैं। परंतु संजय ने बताया कि मुझे तो खुद खबर नहीं है, वो मुझे भी धोखा देकर चले गए, मुझे भी नहीं बताया। और यह उत्तर सुन के तो उनको और भी ज्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे। युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे कारण, क्योंकि मैंने ही उनके 100 पुत्रों के वध का कारण मैं ही हूँ, तो मुझे इतना अपराधी मानकर अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं और उनकी हत्या का अपराध भी अब मुझे ही लगेगा। मुझे तो लगता है कि शायद गंगा में जाकर डूब कर मर गए होंगे वो, इतना अपने दुख को बर्दाश्त नहीं। और सारी जगहों पे ढूंढा उन्होंने, यहाँ तक कि गंगा नदी, क्योंकि भवन के एकदम करीब ही थी, तो वो गंगा में झाड़ डाल डालकर उनको ढूंढ रहे थे। अब गंगा में से वो कहाँ से मिलेंगे, गंगा में थोड़े ना गए थे वो, तो हिमालय गए थे। तो फिर है ना, बहुत ढूंढा ढूंढा, जब उन्हें नहीं मिला तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और इस दुखी अवस्था में जब वो आ गए तो वहां पर अकस्मात नारद मुनि अपनी वीणा सहित आ गए और उनसे युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप मुझे कृपया बताओ कि मेरे ताज श्री कहाँ है। मुझे पता ही नहीं है मेरी ताई, अब मुझे छोड़कर ये सब कहाँ चले गए हैं, आप हमें उनके विषय में बताओ, हमारे दुख का निवारण करो। तो नारद जी ने सोचा, अगर मैं डायरेक्ट से बता दूंगा कि हिमालय में है तो फिर वो शोक से मूर्छित हो जाएंगे और जैसे ही मूर्छा खुलेगी तो वो युधिष्ठिर महाराज इसी भी करके उनको वापस लेकर आ जाएंगे। तो फिर नारद मुनि को पता था कि वो कहाँ है और जब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे पूछा कि वो कहाँ है, बताइए वो कहाँ चले गए हैं, आप उत्तर दीजिए, तो नारद मुनि क्या उत्तर देते हैं, इतना सुंदर प्रवचन करते हैं कि उनके हृदय से वो सारा शोक ही भाग जाता है। वो कहते हैं नारद उवाच, मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, अत्यंत ही सुंदर उपदेश है नारद जी का। नारद उवाच, मां कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकः सपालायस्येमे वहन्ति बलिमीषितो स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीषितो स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। जैसे युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि हे नारद, हे देवर्षि, आप बताइए कि वो मेरे सब पिताश्री, ताश्री और माताश्री सब कहाँ गए हैं, तो नारद जी ने उत्तर में बोला, माँ कंचन शुचो राजन, मैं तुम्हें पहले जो बोल रहा हूँ वो सुनो राजन, तुम्हें किसी के लिए, माँ कंचन शुचो राजन, किसी के लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, ना केवल धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए, बल्कि यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, कोई भी चाहे किधर भी चला जाए, आपको उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कौन कहाँ गया, क्या किया, कुछ ने कुछ खाया या नहीं खाया, जी रहा है, मर रहा है, कुछ मत सोचो, तुम्हें किसी के विषय में भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? यदीश्वर वशम जगत, तुम्हें ये जानना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है भगवत इच्छा से हो रहा है, यद ईश्वर, क्योंकि ईश्वर वशम, ये पूरा संसार, ये पूरा जगत भगवान के वश में है, तो जो कुछ हो रहा है वो भगवान की परम इच्छा से हो रहा है, तो तुम्हें उसमें हस्तक्षेप करने की अथवा उसके विषय में शोक करने की क्या आवश्यकता है, सब कुछ ईश्वर के अधीन है। और सब जितने सारे सलो लोका सपाला यस्य मे वहन्ति बलमीषितम्, संसार के सारे जीव, सारा लोक, सारे लोग, सपाला मतलब उनके जो लोकपाल हैं, यस्य मे वहन्ति बलमीषितम्, और जित उनका ही मतलब जिसकी वहन्ति ले जाते हैं बलि, मतलब पूजा करते हैं जिनकी, क्यों, रक्षितम्, अपनी रक्षा के लिए सब उन्हीं की ओर जाते हैं, क्योंकि सारा संसार भगवान की ही आदेश के अनुसार, भगवान स्वयं कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति, जो कुछ संसार में हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर जब कुछ सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो तुम उसमें शोक क्यों कर रहे हो, इसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान की योजना जो है वो परफेक्ट नहीं है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने गलत किया है जो तुम बैठ के यहाँ पर शोक कर रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो, क्योंकि ससई युनक्ति भूतानी स एव वियुनक्ति स, मतलब अगर इस संसार में कोई किसी से मिलता है, स संयुनक्ति, कोई मिलाता है जीवों को, तो वो भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से होता है, और वियुनक्ति यानी अगर कोई मिलता है तो भगवान की इच्छा से होता है, और अगर कोई बिछड़ता है तो भी वो भगवान की इच्छा से होता है। मतलब जैसे हमारा पूरा परिवार, अगर हम देखें आज अपने परिवार को, तो पहले हम अकेले होते हैं, फिर विवाह होता है, किसी एक व्यक्ति से हमारा मिलाप होता है, मतलब मिल जाते हैं, पहले विवाह से पहले हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो विवाह से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन विवाह करके वो एक बंधन में बंध जाते हैं, फिर उनकी संतान होती है, जो संतान पहले कहाँ थी, कोई पशु थी, कोई पक्षी थी, कोई वृक्ष थी, कोई क्या थी, कुछ पता नहीं, लेकिन वो भगवान की भगवत इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार और कृपा कृष्ण की के वो उस परिवार में आ जाता है बच्चा, तो ये हमारे हाथ में है क्या कि किसी से हम संयोग करते हैं, खुद ब खुद भगवत इच्छा से हो जाता है और भगवत इच्छा से एक समय ऐसा आता है कि कृष्ण की योजना से हम सब बिछड़ जाते हैं। तो हर कोई जो किसी से मिलता है, जो किसी से बिछड़ता है, वो भगवत इच्छा से होता है। तो माँ कंचन शुचोराजन, तुम्हें उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। इतना जो रो रहे हो तुम, इतना विलाप कर रहे हो, इतना दुखी हो रहे हो, किसी के लिए भी, ये तो धृतराष्ट्र और गांधारी गए। अभी तुमको इतना दुखदायक समाचार मिलेगा, उसके विषय में भी सुनकर तुम दुखी मत होना। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो अभी दुखी हो रहे थे गांधारी जी और धृतराष्ट्र जी के लिए, क्योंकि कृष्ण के विषय में तो उन्हें पता ही नहीं था। अगर उनको कृष्ण के विषय में पता चलेगा तब तो वो इतने दुखी हो जाएंगे कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको कृष्ण के विषय में अभी पता ही नहीं है, वो नारद अभी बता नहीं रहे उनको, लेकिन वो बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कह रहे हैं कि आपको किसी भी वस्तु के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अपनी माँ, अपने बाप, अपने पुत्र, अपनी पुत्री, किसी के लिए दुख करने की जरूरत, मतलब जिसके कर्म है वो अपने कर्म को स्वयं भोग रहा है। जो भी किसी को अगर दुख हो जाता है, किसी को कोई कष्ट पहुंचता है, तो उसके लिए भी आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं। और वास्तव में देखा जाए तो किसी भी वस्तु के लिए शोक करने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें दुख मिलने वाला है, जो हमें कष्ट मिलने वाला है, वो तो होगा। अगर किसी को बुखार आ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है और हम दुखी होते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अगर किसी को मानो 104 बुखार आ गया तो हम डॉक्टर को बोलें कि डॉक्टर इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, ऐसा करो 4 जो ऊपर का है वो हमें दे दो, इसका बैलेंस कर दो, इसका 100 कर दो वापस से टेम्परेचर। ऐसा होगा क्या? नहीं, उसके दुख को उसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और तुम्हारे शोक करने से ना उसका दुख कम होगा और ना ही खत्म होगा। तो फिर हमें उसके लिए शोक करने से कोई फायदा नहीं, और जिस चीज में कोई लाभ ही नहीं, वो कार्य क्यों किया जाए? अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये कहते हैं लोका सपाला यस मैंने वहांती भले मीशित, तो उन्हें भगवान की, भगवान से सुरक्षा के लिए बोलना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, तभी उससे कुछ लाभ हो सकता है, परंतु शोक करने से कोई फायदा नहीं। अनुवाद, श्री नारद ने कहा हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी सुरक्षा के लिए पूजा करते हैं, वे ही सबों को पास पास ले आते हैं और उन्हें विलग करते हैं। वास्तव में भक्तों, पूरे श्रीमद् भागवतम में केवल एक ये ही प्रसंग है जहाँ पर शोक करने वाले को डांटा जा रहा है कि आप शोक क्यों कर रहे हो, आपको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में कभी कभी ऐसे डांट कर बताना चाहिए जो इस तरह से बहुत ज्यादा शोक करते हैं भौतिक वस्तुओं के लिए, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है ना। तो फिर ना हमें उनको बताना चाहिए कि दुखी नहीं हो, आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कृपा करने वाले हैं और भगवान की योजना हमेशा परफेक्ट होती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। यदि ईश्वर वशम जगत, संसार चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उसमें जो कुछ भी है भगवान के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चुंटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान की अधीनस्थ है। मूर्ख जीव विशेषतया मनुष्य झूठी परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है, और इस तरह असुर या नियम भंजक के रूप में प्रताड़ित होता है। यहाँ मनुष्य को और असुरों को श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये मूर्ख होते हैं जो भगवान के नियम के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। भगवान ने एक नियम दे दिया है और वो सोचते हैं कि हम भगवान के इस नियम को बदल के दिखाएंगे, लेकिन इस तरह असुर या नियम भंजक के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही अन्य किसी पद पर बिठाया जाता है। मतलब आप अभी जिस स्टेज पर हो, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, वो भगवत इच्छा से होते हैं। अगर आपको किसी भी पोस्ट पर हो तो वो अगर आपको माता बनाया गया है, आपको पिता बनाया गया है, आपको कुछ भी, आप कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, वो भगवान की इच्छा से है। आगे कहते हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज, युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। चाहे कोई कहीं पर भी हो, वो भगवत इच्छा से ही है। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। अब हम संसार में देखते हैं, किसी की इच्छा नहीं होती है कि अपनी पोस्ट छोड़े, लेकिन एक दिन ऐसा आता है पहले कि उसको पोस्ट, कोई भी अच्छी पोस्ट मिलती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो वहाँ से हटा दिया जाता है। है ना, कोई भी नेता होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, चाहता है कि मैं अपनी पोस्ट छोड़ूं, लेकिन भगवत इच्छा से उसे छोड़नी पड़ती है। तो वो सब जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। अतः वह मूर्ख है जो कहता है कि भगवान नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि वे अपने चाचा तथा ताऊ के सहसा चले जाने से अत्यधिक अभिभूत थे। महाराज धृतराष्ट्र यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। महाराजा धृतराष्ट्र को, अब वो हिमालय में गए थे, एक तो उनके लिए बहुत अच्छा था, लाभदायक था, लेकिन ये उनके पूर्व कर्म थे कि वो उनको ऐसा ऐसी स्थिति मिली थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा लघु भ्राता प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया था। अब आज तो उनका सौभाग्य उदय हुआ था, उनके भाग्य का सूर्य आज उदय हुआ था कि उनको विदुर जी के उपदेश समझ में आ गए थे और वो अपने जितने भी, चाहे उसने कितने भी बुरे कार्य किए थे, कैसे भी कर्म थे उनके, लेकिन आज वो उन समस्त कर्मों का खाता बंद करके ग्रह त्याग करके भगवत प्राप्ति करने के लिए निकले थे, और फिर भी युधिष्ठिर महाराज उनके लिए शोक कर रहे थे। तो उनको समझा रहे नारद मुनि कि आपको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के परवाह को बदल नहीं सकता। अब जो दुख आया है जीव के यहाँ पर संसार में, वो दुख या कोई सुख है, तो हम उसको अपनी योजना से बदल नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे कर्मों का होता है। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता है। वास्तव में ये सब जो हमारे कर्मों का खेल है, जिस प्रकार दुख हमारे कर्मों से हमारे खुद ब खुद हमें प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार सुख भी हमें मिल जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है, यस्यैव हेतु प्रियते तको विदु न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपर्यत तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालीन सर्वत्र गाभि ररम हसा। यस्यैव हेतु प्रियतेव को विदु, जो वास्तव में बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, वो उस उद्देश्य के लिए कार्य करता है। न लभ्यते यत् भ्रमता उपरद, जो ऊपर और नीचे के लोकों में नहीं मिलता है, बल्कि वो तो यहाँ भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होता है। बाकी जो भी संसार में मिल रहा होता है, तल लभ्यते दुख वदन्यत सुख, जिस प्रकार दुख हमारे नसीब के होते हैं, हमारे कर्मों के होते हैं, हमें ना चाहते हुए भी हम बाध्य होते हैं उन दुखों को स्वीकार करने के लिए, तो हमारे जो भाग्य के सुख हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। उसके लिए भी एक्स्ट्रा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कालेन सर्वत्र गभीर राम सा, काल ऐसी योजना आएगी, भगवान ऐसी योजना करेंगे कि काल के अनुसार वो हमें प्राप्त हो ही जाएगा। तो उसके लिए हमें ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, और जो दुख प्राप्त हुआ है उसके लिए ज्यादा दुखी होने की के लिए भी आवश्यकता नहीं है। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे। यस्यैव हेतु प्रियतेत को विदु, जो बुद्धिमान है वो इस भौतिक बंधन से छूटने का प्रयत्न करता है, और यहाँ जन्मसिद्ध अधिकार है मनुष्य को ही, ये मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि आप मनुष्य बने हो और आपको मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, और वो कैसे प्राप्त होगा? वैदिक आदेश, मनुष्य के लिए ही ये भगवान ने ये वेद बना है, शास्त्र बनाए, तो वैदिक में वेदों में बहुत सारे आदेश हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सु अवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है, और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि आप यदि अपने इस मनुष्य जन्म में जो कोई उन्नत बुद्धि के सुअवसर का दुरुपयोग करता है, मतलब आपको भगवान ने बुद्धि दी है, आपको भगवान ने फैसिलिटीज दी हैं, उसके बावजूद भी यदि आप वेदों को या शास्त्रों के आदेश को स्वीकार नहीं करते हो और इस सुअवसर का दुरुपयोग करते हो तो वह अधम है, और क्या होगा, उसे इसी जीवन में कष्ट भुगतना पड़ेगा या भविष्य में उसको कष्ट भुगतना पड़ेगा, और इसी प्रकार से भगवान उसे नियंत्रण में रखते हैं। भले ही वो आज भगवान के आदेश को स्वीकार नहीं करता है, दुरुपयोग करता है, परंतु किधर जाएगा? ये पूरा जगत भगवान की अध्यक्षता में है, तो उसे अपने उस दुष्कर्म का अवश्य परिणाम भोगना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवत आदेश को श्रोधारी करके, उसको फॉलो करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस संसार में जिसने जो जो कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार उसको भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए शोक करते करते रहने के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला है। तो यहाँ पर नारद मुनि उसे बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र, तुम्हें मां कंचन शुचो राजन, तुम्हें किसी भी वस्तु के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। दुखी होकर मरने के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला है, यह मनुष्य जीवन आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। तो फिर धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आगे कहते हैं नारद मुनि, यथा गावो नसी प्रोता कंत्यां बद्धाश धाम भी वाप्यंताम नाम निर्वद्धा वहंती बलमीशितु। यथा गावो नसी प्रोता कंत्यां बद्धाश धाम भी वात्यन्त्याम् नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीषितु। यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहे हैं कि कैसे सारा जगत ईश्वर के बस में है। वो उपमा दे रहे हैं, मिसाल बताएं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बेल होते हैं बहुत सारे, जब फसल पक जाती है ना गंदम की या फिर चावल की, तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी रस्सी होती है और उसमें से छोटी छोटी रस्सियां निकलती हैं और वो जो छोटी रस्सियां होती हैं वो सारे बेलों के गले में डालते हैं, फिर वो जो धान बन गया होता है उसके ऊपर बेलों को चलाते हैं, मतलब वो डंडी में से वो धान निकालने के लिए उसको वहां से चला रहे होते हैं। तो वो सारे बेल जो होते हैं वो बड़ी रस्सी के कंट्रोल में होते हैं ना, तो उसी तरह कह रहे हैं यथा गावो नसी प्रोता, यथा मतलब जिस प्रकार बेल, गाव कहते हैं बेल को, उनके नाक से, नाक में रस्सी नथी हुई होती है, तंत्यम और वो डोरी से बंधा हुआ होते हैं, दाम भी मतलब रस्सियों से, वो पहले वो डोरी होती है जो उसके नाक में लगी हुई होती है और फिर बाद में बड़ी रस्सी होती है। तो आगे कहते हैं वाक्तंत्या नाम भीरवत्ता, वाक्तंत्या मतलब वाक कहते हैं जो वैदिक आदेश होते हैं, वैदिक स्रोत्र होते हैं, तो वैदिक स्रोत्रों के जाल में नाम भी यानी नाम पद्धति से बंधा हुआ होता है। कौन? वहंती बलमी, सारे जीव जो हैं वो वैदिक आदेशों से बंधे हुए हैं, वहंती पालन करना उनको पड़ता है बलिम आदेशों को, ईशितुम परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने के लिए, मतलब कि जिस प्रकार अर्थात हर जीव भगवान के निर्देशन के अनुसार ही कार्य करता है, वो बंधा हुआ है भगवान के आदेशों को पालन करने के लिए। तो जो लोग वेद को नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वतंत्र है, वो अपने इच्छा से, वो स्वतंत्र नहीं है, वो कार्य करते हैं, गलत कार्य करेंगे तो क्या होगा, जिस प्रकार से इस संसार में भी हम गवर्नमेंट के आदेशों को पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि गवर्नमेंट पकड़ के जेल में बंद कर देती है, उसी प्रकार यदि हम शास्त्र का आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हम भगवत इच्छा से ऐसी योनि में चले जाते हैं। तो कुछ लोग अच्छे होते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो भगवान उनको जेल में नहीं डालते हैं, मतलब नरक में नहीं डालते हैं, ये सब भगवत आज्ञा का पालन ना करने के कारण ही तो उसे इस अपराधों की सजा मिलती है। तो मतलब इसका ये हुआ कि हर व्यक्ति चाहे जिस भी सिचुएशन में है, चाहे वो भगवान को माने या ना माने, परंतु वो भगवान की आज्ञा से या भगवान की अध्यक्षता से स्वतंत्र कभी भी नहीं हो सकता। अनुवाद देखिए, जिस प्रकार बेल एक लंबी रस्सी से नाक से नथी होकर बद्ध रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध रहकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बांध्य है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की इच्छा हो, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक जीव चाहे वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर हैं क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं हो सकता। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं गवर्नमेंट के आदेशों को, नियमों को तो आप तोड़ सकते हो। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि हम भले ही भौतिक जगत में गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस किए हैं उनको तोड़ते हैं तो हम बच जाते हैं, क्योंकि भौतिक जो इतनी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो सकती है जितनी कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। हम चार दीवारी में रहकर जहां पर कोई भी नहीं होता है, कोई भी अपराध करते हैं तो हमें कैसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम चाहे कितनी ही
छुप कर कोई अपराध करते हैं, परंतु 10 साक्षी होते हैं हमारे, 10 दिशाएं साक्षी होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं और 4 कॉर्नर्स हैं वो सब, और ऊपर आकाश नीचे धरती, ये 10 दिशाएं सदैव हमें हमारे हर कार्य करते हुए देख रही होती हैं। इतना ही नहीं, हमारा जो शरीर है उसके हर अंग पर एक देवता का वास है, हमारे नेत्रों पर, हमारे कर्णों पर, हमारी नासिका पर, हमारे कंधों पर, हर अंग पर एक देवता का वास है। तो हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, चाहे वो कितना ही छुप कर करें, परंतु यह सब साक्षी होते हैं। और जब हम भगवान की अदालत में जाते हैं तो सब एक स्वर में खड़े होकर यह गवाही देते हैं, यह क्योंकि ये आई विटनेस है, सब कुछ उन्होंने देखा हुआ होता है और उनके पास इतने सूक्ष्म कैमराज होते हैं कि वहां पर हमें करके, मतलब उस समय हम लोग है ना, ये कहने के कह भी नहीं सकते हैं कि ये हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट उनके पास सबूत होते हैं। तो किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का भगवान से निर्मित इन नियमों से बच सकना संभव नहीं है। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है। परमेश्वर के आदेशों का पालन करना वास्तव में धर्म केवल यही है कि हमें भगवान के आदेश का पालन करना। ये क्या, अभी धर्म अर्जुन के लिए धर्म क्या था कि अपने ही पितामह को, अपने ही गुरु महाराज की हत्या करना है ना, उनके साथ युद्ध करना, क्यों ये धर्म था? क्योंकि भगवान की इच्छा थी। तो जो भगवान का आदेश होता है, जो भगवान की आज्ञा है, उसका पालन करना ही वास्तविक धर्म है। ऐसी है जगत की दशा। सभी जीवों ने इस संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल रखा है और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा बंधे हुए हैं। ये संसार में बंधन हमारी इच्छा से प्राप्त हुआ है। जीव यदि चाहता है कि वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाए, भगवत प्राप्ति करे, तो उसे केवल यह ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त है कि वो यह शरीर नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा का संबंध इस भौतिक जगत से नहीं है। आत्मा की संतुष्टि इस भौतिक जगत की किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती है, केवल भगवत प्राप्ति ही उसके लिए एकमात्र संतुष्टि है। तो यदि वह इस ज्ञान को आधार बनाकर प्रकृति के नियमों को तोड़ता है और फिर आगे, मतलब प्रकृति के नियमों में जो बंधा हुआ है उसे आगे निकलने का प्रयत्न करता है, तो भगवत प्राप्ति संभव है और इस तरह से वो इस बद्ध जीवन से छूट सकता है। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए, लेकिन माया के चुंगल से मुक्त होने की बजाय मूर्ख लोग विभिन्न नामों से और अधिक बंध जाते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपी, अमेरिकी, चीनी आदि कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे बताया, यथा गावो नसी प्रोतास्तन्यम बद्धश्च दाम्भी, कि जिस प्रकार एक बहुत, जैसे बेल होता है, एक बहुत बड़ी रस्सी से बंधा हुआ होता है, वो रस्सी क्या है, वेद है, और उस, मतलब बहुत बड़ी रस्सी होती है, उसमें छोटी छोटी रस्सियां बंधी हुई होती हैं जो कि बेल के गले में होती है, और वो छोटी छोटी रस्सियां क्या है, वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, तो ये सब रस्सियां हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि और इस तरह वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, है ना। तो फिर हर एक जीव जो है वो ये न के न प्रकारे भगवत आदेश को प्राप्त करने के लिए, पालन करने के लिए बाध्य है। राज्य के तत्त्व नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप हैं। धर्म निरपेक्ष, मतलब जो धार्मिक लोग नहीं होते हैं, ऐसे राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। है ना, आज अधर्मी होते हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान के नियमों को तोड़ने से किसी को डर नहीं लगता। भगवान ने बोल दिया मांसाहार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, परस्त्री संग नहीं करना है, और आज का मनुष्य ये सब भगवान के नियमों को तोड़ने में जरा भी नहीं झिझकता, लेकिन जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको तोड़ता नहीं है। क्योंकि क्यों, वो समझता है कि गवर्नमेंट का रूल तो मुझे है ना पालन करना पड़ेगा वरना मुझे दंड मिलेगा, भगवान का रूल में तोड़ूंगा तो फिर किसने देखा है दूसरा जन्म, है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं फल यह होता है कि ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा अधिक कष्ट भोगना पड़ता है ना। अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ेंगे तो 1 साल 2 साल 10 साल सजा मिलेगी, लेकिन अगर भगवान के नियमों को तोड़ेंगे तो न जाने कितने जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जगत की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण वेदान का पालन कर सके, है ना। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भले ही कोई भौतिकता में बहुत ज्यादा उन्नत हो लेकिन फिर भी वो अपूर्ण ही है, वो स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरी ओर ईश्वर के नियम हैं जिनमें ऐसी अपूर्णता नहीं है, है ना। भौतिक जगत के नियम जो बनाते हैं वो खुद ही अपूर्ण हैं, तो वो उनका कोई कार्य भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन भगवान क्योंकि स्वयं भी पूर्ण है तो उनके किसी भी कार्य में अपूर्णता नहीं होती है। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो निरुद्देश्य व्यक्तियों की काम चलाऊ विधान सभा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि जो नेता होते हैं ना उनको पहले शिक्षा देनी चाहिए कि भगवान के नियमों का पालन करें, क्योंकि नेता लोग जो जन सामान्य है उसको क्या बताते हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स को आपको पालन करना है, लेकिन भगवान के रूल्स के विषय में नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो खुद भी पालन नहीं करते। तो जो बड़े लोग अगर भगवत नियमों का विधि विधानों का पालन करेंगे तो फिर उनको है ना छोटी छोटी सभाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी लोगों, क्योंकि फिर जब धार्मिकता आ जाएगी संसार में तो फिर अपराध स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तो मानव निर्मित नियमों के परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों को नियम में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए जाते हैं। जो भगवान के नियम है वो पूर्ण है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आता। धर्म संस्थाएं या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार में जब जीव आते हैं और भगवत नियमों का पालन करते हैं जो कि भगवान और जो भगवान के मुक्त प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो फिर क्या होता है वो संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर की सेवक की है, अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा कर सकता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। जब वो वास्तविकता क्या है, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दान, तो उसकी जो वास्तविक अवस्था मुक्त अवस्था है वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन, उसी में जीव को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है जब वो अपनी वास्तविकता को स्वीकार करे। लेकिन जीव भोक्ता बनकर अपने आप को स्वतंत्र कभी नहीं बना सकता, फिर उसे कुदरत के नियमों को के अंतर्गत रहना होता है। कभी कभी भगवान के समान तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर, यानी वो इतना स्वतंत्र हो जाता है कि भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन इस बद्ध जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है। इस तरह माया के भ्रम से यह प्रभुता जताने की प्रवृत्ति बद्ध जीव को आगे बढ़ाने का कारण बनती है। अतएव जब तक जीव नित्य सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस जगत के अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। यही श्रीमद् भगवद्गीता तथा संसार के मान्य शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। क्या अंतिम उपदेश है? कि जीव को अपनी वास्तविक स्थिति, कौन सी स्थिति, के मैं भगवान का दास हूँ, इस स्थिति को स्वीकार करना है, इस स्थिति को पुनः प्राप्त करना है और भगवान की शरण ग्रहण करना है। यदि हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं और अपने आप को भगवान का दास नहीं बल्कि भगवान भोक्ता समझते हैं, तब तक इस संसार में हम अधिकाधिक बद्ध होते जाते हैं, माया के चुंगल में फंसते जाते हैं। और सारे जितने भी शास्त्र हैं वो हमें यही उपदेश देते हैं कि हमें इस अज्ञानता, इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना है, आत्म साक्षात्कार करके अपने वास्तविक स्थिति को, वास्तविक स्वरूप प्राप्त करना है। इसी से हम आनंदी भवति, आनंदित हो सकते हैं। आगे कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।